गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हेमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सानिडे अच्छायाच्छुरणशबलं चन्द्रशकलं धनुः शौनासीरम् किमिति न निबध्नाति धिषणा द्वादश रवि से सघन विनिर्मित जो उत्तम माणिक्य समान है तव हेम मुकुट गिर तनये उसका जो जन करता गान उसे तुम्हारे भाल चंद्र में इंद्रधनुष होता प्रतिभात क्योंकि किरीट कांति पड़ने से विविध भांति वह होता ज्ञात।
हे हिमाचल की पुत्री, जो मनुष्य तेरे सुवर्ण के बने हुए किरीट का वर्णन करे तो उसकी धारणा ऐसी क्यों ना होगी कि मानो इंद्रधनुष निकला हुआ है, क्योंकि वह किरीट गगन मणियों अर्थात तारागण रूपी मणियों से घनीभूत है, जड़ा हुआ है और चंद्रमा के टुकड़े का पक्षी के घोंसले सदृश जान पड़ता है, और जो उषाकालीन प्रकाश में रंग बिरंगा चमक रहा है अर्थात उषाकालीन आकाश प्रकृति देवी का किरीट है। यहां कृष्णा चतुर्दशी और अमावस्या की संधि में पड़ने वाले उषाकाल का चित्र खींचा गया है, अर्थात वह भगवती का ही रूप है और विशेषतया कार्तिक की कृष्णा चतुर्दशी यदि ली जाए तो और भी अच्छा है, जिसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, और उसके तुरंत पश्चात महालक्ष्मी पूजन का दीपावली पर्व होता है। सौंदर्य लहरी के इस 42वें श्लोक के साथ हम आनंद लहरी से आगे बढ़कर सौंदर्य लहरी के दूसरे भाग परमालहाद सौंदर्य लहरी में प्रवेश कर रहे हैं। इस भाग में शंकर भगवत पाद ने पिंडस्थ शक्ति और तत्संबंधी श्री चक्र, श्री विद्या, षट चक्र, वेद और उनका मातृकाओं के द्वारा परापश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी से सबके पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला है, जिसका उद्देश्य कुंडलिनी शक्ति के जागरण द्वारा अद्वैत सिद्धांत के जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान की अपरोक्ष अनुभूति कराना मात्र है। इस भाग को हम पिछले ग्रंथ की यानी आनंद लहरी की आत्मा कह सकते हैं। सौंदर्य लहरी के उत्तरार्ध में विश्व को भगवती का विराट देह मानकर प्रकृति देवी के दिव्य देह का चित्र खींचा गया है, जो छंद शास्त्रोक्त आभूषणों से अलंकृत सर्वभावपूर्ण नवरसों में पगी हुई अनादि अनंत महामाया महादेवी आदि शक्ति की झांकी दिखाने वाली वास्तव में सौंदर्य लहरी ही है, जिसको पढ़कर अनात्मवादी भी पुराण कवि भगवान शंकर के अवतार भगवत पाद की इस वैखरी झरी के रसों का आस्वादन करके अपनी अनात्म देह में स्थित अधिष्ठात्री चेतना देवी की अनंत महिमा की किंचित सी झांकी पाकर आत्मविश्वासी बन सकता है, योगी बन सकता है। ओ शिवे Daughter of the king of snow-clad mountains, your golden crown, closely embedded with gems, shines like 12 suns, which derive the color of ruby from it. Will not the intelligent one who sings your praise see this reflection as the rays of a moon causing rainbow? This verse talks about her crown, which is fully embedded with precious gems. These gems are closely embedded on gold, leaving no space between them. The rays emanating from these gems appear like 12 sons known as Dwadasha Aditya. It is believed that there are 12 suns, each shining for a month in rotation. Astronomically, for every calendar month, a sun presides over. The rays emanating from her crown appear as if all the 12 suns appear simultaneously, deriving the qualities of the gems embedded in her crown. It is also said that these 12 suns, unable to have her glimpse from close quarters, have taken the forms of precious gems and have adorned her crown and thus have the benefit of worshipping her perpetually all the time. Bhagwat Pad Shankar looks at her as an embodiment of compassion and grace. In spite of 12 sons adoring her crown, the great poet, who is totally devoted to her, visualizes moon, which is of cool nature, as opposed to the extreme heat of 12 suns. And when Shankaracharya speaks about rainbow, it means the 6 psychic chakras and Sahasrar, as the chakras have the colors of the rainbow, Vibhyor, beginning from Sahasrar to Muladhar. After having immersed in the bliss caused by the first part, the aspirant's Kundalini has ascended to Sahasrar, activating all the chakras below. So when he speaks about moon, he could be referring to Bindu in Sahasrar, from which the nectar drips down into throat during meditation. Beginning from this 42nd verse of Saundari Lehri, Shankaracharya describes Parashakti's gross form. First section described her subtle forms, and this portion of the scripture is known as Paramalhar Saundari Lehri. Basically, this section will be helpful only to those who are not able to meditate on her formless form. So there is another view also, that this part is meant only for those who have just entered spiritual paths, setting aside all the rituals. It is believed that they cannot easily contemplate on her, and in order to help them, Shankaracharya has authored the second part known as Saundari Lehri. Waves of beauty, and some of these verses are too secretive and intimate in nature. So naturally a question arises as to how a great Advait saint like Shankaracharya could describe her feminine beauty so deeply. It is only the mindset of the aspirants that count and the way they perceive her. And any misperception here will indicate the immaturity of the aspirant. For him, there's no difference between wealth, women, logs and stones. He considers everything as Brahman. अब नौ बार इस श्लोक की पुनः आवृत्ति करते हैं और आज का पाठ संपन्न करते हैं।
गतैर माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सांद्रघटितं किरीटं ते हैं मम हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सानिडे अच्छायाच्छुरण शबलं चंद्रशकलं धनुः शौनासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणा गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते है मम हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सानिडे यच्छायाच्छुरणशबलं चंद्रशकलं धनुः शौनासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणाम् गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हैं मम हिमगिरि सुते कीर्तयतियः सनिडे यच्छाया चुरण शबलं चंद्रशकलं धनुः शौनासीरं किमिति नान्यबध्नाति धिषणा गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हेमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीळे यच्छायाच्छुरण शबलं चन्द्रशकलं धनुः शौनासीरं किमिति नान्यबध्नाति धिषणा गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हेमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीळे यच्छायाच्छुरण शबलं चन्द्रशकलं धनुः शौनासीरं किमिति नान्यबध्नाति धिषणा गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हेमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनिडे यच्छायाच्छुरण शबलं चन्द्रशकलं धनुः शौनासीरं किमिति नान्यबध्नाति धिषणा गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हेमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनिडे यच्छायाच्छुरण शबलं चन्द्रशकलं धनुः शौनासीरं किमिति नान्यबध्नाति धिषणा गतैर्माणिक्यत्वं गगन मणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हेमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनिडे यच्छायाच्छुरण शबलं चन्द्रशकलं धनुः शौनासीरं किमिति नान्यबध्नाति धिषणा गतैर्माणिक्यत्वं गगन मणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हेमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनिडे यच्छायाच्छुरण शबलं चन्द्रशकलं धनुः शौनासीरं किमिति नान्यबध्नाति धिषणा ॐ उमा महेश्वराय नमः ॐ गौरये